रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पदवंदन किए नासत विघ्न अने। भगवान को पूछते हैं कि महाराज भक्ति देव, तो भगवान कहते हैं भक्तों के पास जाओ। भक्तों के पास जाते हैं तो कहते हैं हमको तो भगवान भक्ति देते तब भक्ति होती है, भगवान के पास जाओ। अपन किसके पास जाए? उद्धव जी को भगवान ने गोपियों के पास भेजा और गोपियों ने वापस भगवान के पास भेज दिया। उद्धव जी ने जब भगवान से विदाई मांगी तो ऐसा लगा कि क्या ये भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग कितना अच्छा है जिसमें रोना नहीं, हंसना नहीं, कभी वियोग नहीं, कभी संयोग नहीं, कभी मिलना नहीं, कभी बिछुड़ना नहीं, एक स्वरूप का अखंड आनंद मिलता है। ये भगवान स्वयं सच्चिदानंद घन होकर के कभी तो यशोदा के लिए रो रहे हैं, कभी नंद जी का नाम लेके रोते हैं, कभी गोपियों के लिए रोते हैं। ये क्या है? ये रोना धोना तो संसार में बहुत होता है। किसी के घर कोई मर गया, वियोग हो गया तो रोना पीटना चालू हो गया। कभी कोई बिछड़ा हुआ मिल गया तो बस खुशी नहीं समाई। ये क्या भगवान है? और भगवान ने यहां तक कहा कि वो गोपियां मेरे बिना प्राण धारण नहीं करती है, बड़ी मुश्किल से जी रही है, एक ही आशा में कि कभी कृष्ण हमको मिलेगा, तुम जाकर संदेश सुना के आओ। भगवान ने कह दिया, भगवान के साथ उद्धव जी का बचपन से ही प्रेम था, चले गए। बड़ी झुंझलाट लगी उद्धव जी को। और जब गोपियों के पास पहुंचे, गोपियों की दशा देखी, गोपियों का रोना धोना देखा कि एक कृष्ण के दूत समझ करके सब काम छोड़कर मेरे पास आ गई, सुबह से लेकर शाम तक मेरे यहां बैठी हैं, नए नए भोजन की परवाह है, नए नए बाल बच्चे याद आते हैं, न इनको घर का आराम याद आता है, केवल कृष्ण की चर्चा कर रही है। और एक जन्म की नहीं, कई कई अवतारों की बातें बोलती हैं। कितना विवेक है इनमें, कितना इनमें समझ है। ये वियोग अज्ञान वाला वियोग, इसमें ये जो रोना हो रहा है ये अज्ञान जनित रोना नहीं है, ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है उसमें रोना है। उद्धव जी खुद रोने लग गए। उनके रोने की अवस्था से उद्धव जी रोने लगे। ये भगवत प्रेम है। भगवान पास में, हृदय में, स्वरूप में विराजमान, फिर भी भगवान के लिए वियोग, फिर भी भगवान के लिए रोना, क्या ये गोपियों का प्रेम है। मन में विचार आया कि ऐसे प्रेमी भक्तों के पास भगवान मिलने के लिए आते क्यों नहीं है, भगवान आते क्यों नहीं है, जाके भगवान को समझाऊंगा, ये कहूंगा वो कहूंगा। खूब उन्होंने मन में उपालंब लिया और भगवान ने वहां दूसरी लीला की, आ आओ आओ उद्धव जी, आओ आओ, देखो भक्तों से मिलने के लिए चले। तब वह गोपियों के पास तो गए नहीं, दूसरों के पास गए मिलने के लिए। एकांत में भगवान से पूछा, डकार रुकी। एकांत में फिर भगवान से पूछा कि प्रभु आप ज्यादा प्रेमी है कि आपके भगत ज्यादा प्रेमी है, आप में ज्यादा प्रेम है कि भक्तों में ज्यादा प्रेम है। तो भगवान ने कहा कि भाई भक्तों में ज्यादा प्रेम है। यदि तू प्रश्नोत्तर से पूछता है तो भक्तों में ज्यादा प्रेम है, ये कहो ना, प्रश्नोत्तर से नहीं, मैं तो आपका खुद का अंतरंग होकर पूछता हूं कि तुमने क्या निर्णय किया कि महाराज आपके पास देखता हूं, आपके पास आता हूं, आपकी बात सुनता हूं, तो लगता है आप में ज्यादा प्रेम है। देखो कौन हस्तिनापुर पांडव लोग, उनका समाचार पूछते हैं, कुंती का समाचार पूछते हैं, और कहां आप गोपियों के लिए मुझे भेजते हैं। यदि आप में प्रेम कम होता तो मुझे क्यों भेजते, और यदि आप में ज्यादा प्रेम है तो फिर गोपियों से आप मिलते क्यों नहीं, पांडवों की खबर लेने के लिए आप खुद क्यों नहीं चले जाते, हस्तिनापुर अक्रूर को क्यों भेजते हो, कुछ समझ में नहीं आया। भगवान ने कहा देखो तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं कहता कि भक्तों में ज्यादा प्रेम है, अब तू मेरा रह गया इसलिए तुझे बताता हूं कि मेरे में ज्यादा प्रेम है। मेरे में प्रेम इसलिए कि मैंने गोपियों के पास तुझे भेजा, गोपियों में से किसी ने भेजा क्या यार दूत बनाकर। भगवान उद्धव जी के समझ में आ गया, कहा कि महाराज इसका मतलब है भगत लोगों को चाहिए कि आपसे भक्ति मांगे, अब वो तुम जानो, लेकिन मैं हर किसी को मिलता तो हूं नहीं, इसलिए जो मेरे भगत है वो मेरे भगत मेरे लोग को छोड़कर आते ही संसार में इसीलिए है कि यहां आकर के वे मेरी भक्ति में लोगों को लगाते हैं और सबको अपने लोक में ले चलते हैं। भगत लोग मेरी प्रेरणा से संसार में आते हैं और आकर के और वे संसार को प्रेमी बनाकर मेरे धाम में पहुंचाते हैं। ऐसे जो पुरुष होते हैं वो कारक पुरुष कहलाते हैं, जो अपने उद्धार के लिए नहीं आते, दुनिया के उद्धार के लिए आते हैं। सेठ जी से पूछा गया कि ऐसा कारक पुरुष आपकी नजर में कोई आया क्या, तो सेठ जी ने कहा कि और कोई आए होंगे मुझे पता नहीं, मुझे तो एक पुरुष याद आता है कि कौन, कि व्यास जी, वेद व्यास जी महाराज है, ये कारक पुरुष के रूप में यहां अवतार लिए हैं, भगवान के भेजे हुए हैं, कि महाराज शास्त्र में तो उनको साक्षात भगवान का अवतार माना है, कि मैं भी मानता हूं, मैं भी उनको अवतार ही मानता हूं, परंतु कारक पुरुष के रूप में उनका अवतार हुआ है, भगवान के संकल्प को पूरा करने के लिए अवतार हुआ है। ऐसे जो प्रेमी लोग हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति और भक्त और भगवंत और गुरु, बस इनकी विशेषता केवल भक्ति के कारण से। किसी तार में किसी खम्भे में कोई करंट आता हो और उसके साथ जो वस्तु छू देंगे तो उस वस्तु में भी करंट आएगा। करंट वाली चीज को हमने छू दिया तो हमारे में भी करंट आएगा, अब हमको कोई छू देगा तो उसमें भी करंट आएगा। ऐसे ही भक्ति के साथ या भगत के साथ या भगवान के साथ या कोई श्रेष्ठ महापुरुष में ऐसे जिनसे हमको आध्यात्मिक लाभ होता है, इनके साथ हर आदमी को जुड़ जाना चाहिए। पर संत महापुरुषों में जल्दी श्रद्धा होती नहीं है। कोई अच्छे से अच्छे संत भी हो और हमारी यदि श्रद्धा में कमी हो तो वह संबंध करने में लाभ नहीं है। आज के जमाने में तो पूरा पता चलता ही नहीं। इसलिए भगवान के साथ संबंध किया जाए और कोई जो भक्त हो गए हो उनके साथ संबंध किया जाए। दो बातें हैं, किसी महात्मा में हम लोग श्रद्धा भी करते हैं कि महात्मा जी बड़े अच्छे हैं, परंतु इनमें ये कमी है, बस यहां परंतु लगते ही वो चीज खत्म हो गई। ऐसी आज के जमाने में श्रद्धा न तो श्रद्धालु की हो सकती है और न ऐसे परम वीतराग महापुरुष अब इस जमाने में मिलने वाले हैं। इसलिए हम लोगों का जीवन कहीं धोखे में न चला जाए तो जितने संत हो गए जिनमें हमारी लेश मात्र भी अश्रद्धा नहीं हो सकती। सेठ जी ने कहा था कि मेरे में जितने मुझे जानने वाले हैं ये इतनी श्रद्धा नहीं कर पाएंगे, जो साहित्य पढ़ने के बाद जिन्होंने मुझे कभी देखा नहीं उनकी श्रद्धा ज्यादा होगी और उनका कल्याण पहले होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे में कोई दोष देखा ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं, वो जान ही नहीं सकते, वो केवल श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे। उनकी श्रद्धा है, वो श्रद्धा उनका कल्याण करेगी, मेरे में थोड़ी थोड़ी ताकत है। तो भक्त हुए, जितने भक्त हो गए हैं उनके अंदर हमारी श्रद्धा हो, भगवान में श्रद्धा हो। भगवान को देखा नहीं, भगवान को नहीं देखा बड़ा अच्छा हुआ। भगवान को यदि हम देख लेते तो हमारा कल्याण में, हमारे कल्याण में बाधा पड़ जाती। प्राय लोग कहते हैं कि भगवान यदि हमको दिख जाते तो हम संसार को क्यों देखते, हम संसार में मन क्यों लगाते, हमारा संसार से क्यों संबंध बनता, भगवान दिखे नहीं तब क्या करें। भगवान कहते हैं नहीं दिखे तब तक ही प्रेम टिकेगा, दिखने के बाद टिकेगा ही नहीं, कैसा नहीं हो सकता। तो कहा अच्छा बताओ कि तुम्हारे परिवार में जितने लोग हैं वो मेरे से अलग हैं क्या? पिता है, माँ है, भाई है, बंधु है, स्त्री है, पुत्र है, इनके साथ खटपट होती है कि नहीं की होती है? क्यों? जब आपका उनमें प्रेम है, आपने उनको देखा है, तो लड़ाई क्यों होती है? पिता के साथ लड़ाई हो जाती है पुत्र की, माँ के साथ लड़ाई हो जाती है, भाई के साथ हो जाती है, भतीजी के साथ हो जाती है। ऐसा कोई परिवार का संबंध नहीं है कि जिसमें खटपट न हो, पति पत्नी के बीच में खटपट हो जाती है। मैं तो हूँ, पिता भी मैं हूँ, माँ भी मैं हूँ, भाई भी मैं हूँ, सब मैं ही हूँ, सब मैं नहीं वही मैं ही हूँ। तो मैं तुमको दिखता हूँ तो तुम खटपट करते हो और नहीं दिखता हूँ तो उपालों को देते हो, तीसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए भगवान छिप करके रहते हैं कि भाई तुम मेरे, तुम मुझे देखो मत और प्रेम करो। वो प्रेम बड़ा विचित्र होता है। इसलिए कई भक्तों ने कहा है भगवान आप हमको दर्शन मत दे देना, दर्शन मत देना, दर्शन देओ जिनको दर्शन की इच्छा है, मुक्ति देओ जिनको मुक्ति की इच्छा है, तो भी क्या चाहते हो? हम तो बस तड़पन चाहते हैं, रोना चाहते हैं, विरह चाहते हैं, तुम्हारे बिना रह रह सके, पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, ऐसे हम आपके बिना रह तड़प तड़पने लग जाए, तड़पन दे दो। कोई हीरा मोती नहीं मांगते, कोई सोना चांदी नहीं मांगते, कोई अन्न का भंडार नहीं चाहते, कोई हम संसार में प्रतिष्ठा नहीं चाहते, कोई हम निरोगता नहीं चाहते, शरीर निरोग बना दो ना बाबा, मर जाए जैसी बीमारी दो, एक बार नहीं हजार बार दो, नरक में भेज दो, नरक से तो बड़ी बीमारी नहीं होती, नरक में भेज दो, सब आपका प्रेम चाहिए, केवल प्रेम, उसी के लिए ये भक्तमाल बनी है। और उन्हीं प्रेमी महापुरुषों की गाथाओं को गागा करके महापुरुषों ने भगवान को आनंदित किया है। देखो कोई आदमी किसी के पास जाए और वहां के जो बच्चे हैं उस बच्चे के साथ खेलने लग जाए तो माता पिता खुश हो जाते हैं। किसी का बच्चा है उसका खूब प्यार करें, लाड करें, गोदी में खिलाएं तो उसके दूर बैठे माँ बाप राजी हो जाए। ऐसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए जितने भक्त हुए वे भगवान के बच्चे, अब उनकी कथा कहते हैं, सुनते हैं, उनको हृदय में बैठाते हैं तो दूर बैठे भगवान खुश हो जाते हैं, हमारे बेटों को इन्होंने खूब खिलाया पिलाया। इसलिए भक्तमाल की कथा तो भगवान को रिझाने का बहुत सुगमतम उपाय है। पांडवों की बात चल रही थी, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन पापम प्रणश्यति बिरकोदर कीर्तनेन। अब अर्जुन की बात कल आपने सुनी, और शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तनेन। यदि हम धनंजय का नाम लेंगे, अर्जुन का नाम लेंगे तो शत्रुओं का नाश होगा। शत्रु कौन? किसी व्यक्ति को शत्रु मान लिया तो कल्याण नहीं होगा। सेठ जी ने लिखा और कहा भी, एक व्यक्ति को भी यदि हमने संसार में किसी को शत्रु मान रखा है तो कल्याण तो नहीं होगा। एक व्यक्ति भी हमारी दृष्टि में हमने मान लिया हमारा शत्रु है, कल्याण नहीं। फिर शत्रु भी नश्यति। शत्रु क्या है? शत्रु हमारे अंदर है, हमारे अंदर के शत्रु हैं, वो शत्रु नष्ट होने चाहिए। काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, मद है, मात्सर्य है, परनिंदा है, दूसरे की बुराई करना है, दूसरे की बुराई करना है, दूसरे की बुराई करना और दूसरे की बुराई कहना बहुत बड़े दोष हैं, ये शत्रु हैं हमारे। एक आदमी में ये अवगुण नहीं था, कई प्रकार का दूसरे की बुराई नहीं करता था, पर जब करने लग गया तो जो दूसरे का दोष था वो खुद में घटित हो गया। अरे मेरे में दोष कहां से आए? अरे दूसरे की निंदा की ना, तो वो निंदा करते 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 हमारा हृदय भी उस निंदा योग्य बन गया, निंदा के वाले काम में चिपक गया। देखो अर्जुन है, वो युद्ध करते समय में पहले शोकाविष्ट होता है। पहले अध्याय में देखो, ऐसे करते करते इतना शोक किया कि शोक संविघ्न मानस हो गया, उसका मन शोक में ही डूब गया। एवं उक्त्वा अर्जुन संखे रथोपस्त उपाविशत विसृज्य ससरन चापम शोक संविघ्न मानस है। उसका मानस था, उसका मन था, वो शोक में ही संविघ्न हो गया, दम जुड़ गया, क्योंकि शोक की बातें कर रहा था। गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाय। शोक की बातें करते 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 शोक संविघ्न मानस है। ऐसे ही भक्ति की बातें करते रहे आदमी, सत्संग की बातें करता रहे, करते 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 उसका अंतकरण सत्संगमय हो जाता है। मातृ सुतौ कथयता न भवन्ति रोगा। और जो नकुल और सहदेव की कथा करेंगे, सुनेंगे, उनके रोग नहीं होगा। रोग यही, कौन से रोग? शरीर के रोग नहीं, मानसिक रोग नहीं होंगे। रामचरितमानस के अंत में पूछा है काकुसुंड जी से कि मानस रोग क्या है, तो बड़ी सुंदर व्याख्या है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार ही दुखद डमरुआ। डमरुआ माने ये शरीर यूं हो जाए, गठिया हो जाए, गठिया डमरू की तरह टेढ़ा मेढ़ा हो जाए शरीर। अहंकार अति दुखद डमरुआ। क्रोध है, ये पित्त की बीमारी है, पित्त चढ़ जाए ऐसे क्रोध है। तो ये मानस रोग नहीं होते, क्यों? कि नकुल और सहदेव को याद करने से। नकुल और सहदेव में क्या बात थी कि नकुल और सहदेव वास्तव में देखा जाए ये पांचों पांडव वास्तव में एक ही थे। व्यास जी की और वसुदेव जी की कहीं बात हुई है, वहां पर आया है कि राजा च भीमसेनश्च सहदेवश्च पांडव नकुलो याज्ञ सेनी च षडैक मनसो वयम। ये छह एक ही मन की छह वृत्तियां हैं। कौन? पांच तो पांडव और एक द्रौपदी। सहदेव थे, उनमें बहुत बुद्धिमान थे। जिस समय भगवान की अग्र पूजा हो रही थी, यहां राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा किसकी की जाए, तो वहां सहदेव खड़ा हुआ। सहदेव ने घोषणा की कि मैं अग्र पूजा के लिए जिसकी घोषणा करता हूं, वो घोषणा जिसको पसंद नहीं है उसके माथे पर मेरा सिर, मैं उसके माथे पर मेरा पैर रखता हूं, उसके सिर पर मेरा पैर है। इतनी चुनौती के साथ घोषणा करता हूं। और जिसको ये अग्र पूजा समझ में न आए, वो सभा से बाहर निकल जाए। लोगों ने कहा नाम तो बताओ। तब उन्होंने बड़ी महिमा गा करके भगवान कृष्ण का नाम लिया कि मैं अग्र पूजा में कृष्ण का नाम लेता हूं। यदि ये नाम किसी को आपत्तिजनक लगे, या तो वो वहां से निकल जाए, और नहीं तो उसके सिर के ऊपर मेरा पैर है। चुनौती है मेरी, आओ कौन आता है। तो शिशुपाल खड़ा हुआ वहां, अरे सहदेव तू पांचों में सबसे छोटा, इधर ये अपने भाइयों में सबसे छोटा, कौन? कृष्ण। तुम छोटो छोटो ने छोटी छोटी बातें यहां बड़ों के रहते हुए कैसे चालू कर दी? वसुदेव जी का सबसे छोटा लड़का है ये, इनसे छोटी तो बहन है, पर लड़कों में तो सबसे छोटा यही है, और पांडवों में सबसे छोटा तू है। आज इतने बड़े ऋषि महर्षि महात्माओं के रहते हुए, सदसत पतियों के रहते हुए, तुम कृष्ण की अग्र पूजा का प्रस्ताव रखते हो, और मेरे जैसे शूरवीर के रहते हुए यह कहते हो कि वो बाहर निकल जाए, नहीं तो उसके सिर के ऊपर मेरा पैर है, बोलते हुए तुझे लाज नहीं आती? सहदेव वहां उठ करके गदा लेकर के जाने वाले थे, रोक दिए। युधिष्ठिर का चुप चुप बैठ बैठ चुप हो गए। भीष्म वगैरह भी तैयार हुए, भीम तैयार हुआ। भीम तैयार हुआ तो भगवान ने मना कर दिया, भीमसेन बैठ जाए। भगवान की एकदम चोरी चढ़ गई। इसलिए नहीं कि मेरा अपमान हुआ, इसलिए कि अब इसका समय आ रहा है। सावधान किया शिशुपाल, सावधान हो जाओ। तुम्हारी माँ को मैंने तुम्हारे सु अपराध क्षमा करने के लिए कहा है, तो तुम्हारे इतने अपराध हो गए, अब तुम चुप हो जाओ। क्या कर लोगे तुम मेरा। ऐसे करके उसने 100 की संख्या की, भगवान ने सुदर्शन चक्र से वहीं उसका सिर काट दिया। सहदेव थे जो सबसे पहले खड़े हो रहे, ले जाओ इस लाश को बाहर निकल, बाहर फेंको इसे। इतने सहदेव निर्भीक निर्भय है। स्वयं कुंती ने भी कहा है नकुल और सहदेव के लिए, यह सर्वधर्मार्थ विनिश्चयज्ञो भयार्तानाम भय हर्ता मनीषी, जो सबके भय को दूर करने वाला है और दूसरे की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। स एव वीरो नकुलो पतिर्वे, वो नकुल मेरा पति बने। और बुद्धि के अंदर, सभा के अंदर जो स्पष्ट बात कहने वाला सहदेव है वो मेरा पति हो। इस प्रकार से नकुल सहदेव की बात, नकुल सहदेव का अपने भाइयों से ऊपर तीन, जो तीनों भाई है युधिष्ठिर भीमसेन और अर्जुन, इनसे कभी ऊपर इधर उधर गई, सदा इनके साथ रहे, तो उनका चरित्र ही इनका चरित्र माना जाता है। अश्विनी कुमार का रूप था ही। अब आती कुंती की बात। कुंती थी, ये कौन थी? रिद्धि और सिद्धि आपने सुनी है ना, रिद्धि और सिद्धि, इनमें जो सिद्धि है, सिद्धि का थोड़ा सा जो अंश था वो इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आया, वो कुंती माना गया। इसीलिए सिद्धि के सारे गुण कुंती में मौजूद थे। कुंती भगवान की सगी बुआ थी, वसुदेव जी की सगी बहन थी। और राजा सूरसेन की लाडली बेटी थी। राजा सूरसेन का और कुंती भोज राजा था, उन दोनों का बहुत प्रेम था। तो कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, उनका कि तुम्हारी लड़की मेरे को दे दे। तो सूरसेन जी ने अपनी लड़की कुंती को उन्हें दे दिया। छोटी सी बच्ची थी, बड़ा लाड प्यार से पालन किया, और गोदाई बच्ची थी, गोदाई बच्ची का बहुत स्नेह करने लगे। बड़ी अच्छी तरह से खातिरदारी करने लगी। संसार में आपने दुर्वासा को प्रसन्न मुद्रा में शायद ही कहीं देखा होगा। भगवान कृष्ण भी दुर्वासा को प्रसन्न नहीं कर सके। दुर्वासा ने कहा कि कृष्ण हम आज तुम्हारे यहां भोजन करेंगे, करो महाराज भोजन, हम गरम गरम खीर का करेंगे, अच्छी बात है महाराज। फिर गरम गरम खीर सामने रख दी। फिर कहा कि देखो हम कहें वैसा करो, हम तुम्हारे अतिथि हैं, तुमको अतिथि सत्कार करना, ये गरम गरम खीर है, ये तुम और रुक्मिणी जी दोनों अपने शरीर पर लगाओ। भगवान ने कहा आपकी आज्ञा लगानी पड़ेगी, शरीर पर गरम 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 खीर चौपट। फिर कहा कि रथ के अंदर एक तरफ ये जुतेगी, एक तरफ आप जुतोगे, दोनों जने रथ के रथ को अंदर जुतो और मैं उस पर बैठ के चलूंगा, ये सही माना। रथ में लेकर चलने लगे, हमको प्यास लग आई, जल पिलाओ। अब जल कहां से लाए, वहां जंगल में द्वारिका में तो जल ऐसी खारा समुद्र का, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे जल पिलाओ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी। बड़े मिजाजी भगवान ने फिर वहां एक बाण मार करके वहीं पर मीठा जल पैदा किया। आज भी द्वारिका में एक जगह है जहां पर मीठा जल मिलता है। अस्तु दुर्वासा ऋषि बहुत कम प्रसन्न हुए, कहीं हुए वो तो, चाहे जिस पर चाहे जिस दिन से बिगड़ जाए। कुंती भोज के यहां आएंगे एक दिन, अब वहां छोटी बच्ची कुंती ने इतना अच्छा स्वागत किया उनका, उनको कहना न पड़े, जो आवश्यक वस्तु होती सब पहले ही ला करके रख देती थी। दुर्वासा ऋषि देखने लगे कि इसमें कोई न कोई गलती हो तो मैं शाप दूंगी, उनकी ये आदत थी। वास्तव में देखो दुर्वासा ऋषि की लोग कमी कमी देखते हैं, पर वो दुर्वासा ही थे। वास्तव में बहुत बढ़िया थे वो दुर्वासा। वास बोलते हैं कपड़े को, वस्त्र ना, वस्त्र वस्त्र शब्द जैसे बनता है उसी वसन है, वसन। तो वो ऊपर ऊपर से खराब दिखते थे, अंदर से बहुत अच्छे थे दुर्वासा। किसी के अंदर की भक्ति को प्रकट करने के लिए नाराज होते, शाप देते, उसमें से जो जो शाप दे उसमें से गुण प्रकट हो। अम्बरीश को शाप दिया तो अम्बरीश का गुण ही तो प्रकट हुआ। जैसे कोई अभी चातुर्मास में बर्तन है, पीतल का बर्तन है, तांबे का बर्तन है, वो थोड़े से बदल वगैरह आने से बदरूप हो जाते हैं, थोड़ी नींबू आदि की खटाई लगा होते एकदम साफ हो जाते हैं। खट्टी छाछ हो उसमें नमक हो, फिर उसमें उसको धोया जाए, फिर उसमें नींबू लगाया जाए, सब खारी खारी चीजें हैं, लोटा एकदम साफ हो जाता है। ऐसे ही भक्तों को चमकाने वाले थे दुर्वासा ऋषि। वो दुर्वासा ऋषि देखे कि बच्ची के अंदर सेवा में कोई कमी हो तो मैं कमी निकालूंगा। खूब कोशिश की, खूब कोशिश की, कोई कमी नहीं निकली। और दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, जाने लगे, कहा कि बेटा आप तेरे को एक मंत्र देते हो, अथर्ववेद का मंत्र है। अथर्ववेद का शिरोभाग का मंत्र है, उस मंत्र को तुम ज्यों ही जपोगे तुम चाहे जिस देवता को बुला सकते हो और उस देवता से चाहे जो तुम वरदान प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी सेवा से मैं इतनी खुश हो गई। जिस देवता को बुलाएगी वो देवता आ जाएगा। वह देवता कहेगा बोलो बच्ची क्या बात है, तुम्हारा क्या काम करें, ऐसे तुम्हारी हाजिरी बजाने लग जाएगा। दुर्वासा जी चले गए। फिर जो है उन्होंने एक दिन यूं ही बैठे बैठे विचार किया, ये सारे इस जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य भगवान आकाश में इतने दूर है, ये मेरे यहां आ सकते हैं, परीक्षा करें। देखो संतों के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, परीक्षा नहीं करनी चाहिए। परीक्षा सदा अपनी करो और संत वचनों पर विश्वास करो, भगवान के वचनों पर विश्वास करो। उसने क्या किया, अपने आप पर विश्वास कर लिए, अपने अपने आप पर तो उसने विश्वास रखा, उनकी ली परीक्षा। देखे आ सकते हैं आगे साहब, सूर्य भगवान आगे मंत्र के उच्चारण करते ही आए, घबरा गए। कुंती जी घबरा गई। सूर्य भगवान ने कहा कि भाई कैसे बुलाया कुंती जी आपने, तो मैंने तो आपकी परीक्षा ली। ऐसे परीक्षा नहीं लेते हैं, बिना काम हमको बुलाया और फिर कहते हैं परीक्षा ली है। तो कहा कि बुला तो लिया कर, तो ठीक कोई बात नहीं, आपके कान से एक लड़का पैदा होगा, कान से एक लड़का पैदा होगा। तब फिर वो कान से कर्ण, उसका नाम कर्ण इसीलिए रखा गया। अब उसने देखा कि मैं कुंवारी हूं। देखो ये जैसे हम लोग माता के पेट में धीरे धीरे बढ़ते हैं, जन्म लेते हैं, ऐसे जन्म नहीं लिया है। ये देव सृष्टि है, ये सृष्टि हम लोगों के समान नहीं होती कि माँ के पेट में 9 महीने तक बिचारी को कष्ट देवे, उसके बाद छोटे से आवे, फिर दूध पिए और फिर हम बड़े होवे, ऐसे नहीं थे। इधर कहना हुआ, इधर जन्म ना हुआ, कान से पैदा हुआ। और उन्होंने कहा कि अब लोग कैसे मानेंगे बात, हरेक को तुम्हें कहने से रही और हरेक को सूर्य भगवान कहने से रहे, अरे बिना विवाह के बच्चा कैसे हो गया, क्या कहेंगे। तो उसको नदी में प्रवाहित किया, सभी जानते हैं। फिर उसने किसी देवता को बुलाया नहीं। जब पांडु जब जाने लगे मरने लगे तब पांडु ने कहा कि कुंती तुम्हारे पास वरदान सुरक्षित होना, उससे तुम देवताओं का आह्वान करो। तब उन्होंने पांच देवताओं का आह्वान किया। आगे सब कुंती अपने पति के स्वर्गवासी होने के पश्चात धृतराष्ट्र और दुर्योधन की दुर्नीतियों के अंतर्गत बहुत कष्ट पाई, लेकिन बच्चों का पालन उसको विशेष रूप से करना था। सारे कष्ट सहन कर लिए, परंतु यही ध्यान में रखा कि भाई धर्म है और धैर्य है, ये दो छोड़ने लायक नहीं होते। धर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने। खूब विपत्ति आई, परंतु अपना कभी भी मुख नहीं खोला और उस विपत्ति के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। दूसरे के दुख में वो कभी पीछे नहीं रही। आपने सुना ना कल परसों एक चक्रा नगरी के अंदर उस ब्राह्मण के परिवार का कैसे कष्ट दूर किया। पांडवों को जब राजगद्दी मिल गई तब धृतराष्ट्र और गांधारी वहां से चुपचाप चले गए, तो कुंती भी साथ में रवाना हो गई। देखो आप, जेठ जेठानी की सेवा करने के लिए कि आप लोग वन में जा रहे हो, आपकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि आपको तो दिखता नहीं है और आप बुड्ढे हो और आपने आंख पर पट्टी बांध रखी है। जेठानी जी, मैं यहां बैठी क्या करूंगी, इतने उम्र भर में कष्ट पाया है और अब बेटे राजगद्दी पर बैठे हैं। वो राजमाता के पद पर मानी गई कुंती, लेकिन वो सब राज सुख छोड़ करके अपने जेठ जेठानी की सेवा की। गांधारी ने बहुत मना किया, कुंती तेरी सेवा के समय में हमें हमारे अत्याचार याद आएंगे, हम शर्मिंदगी का अनुभव करेंगे, तुम अपने यहीं रहो, हमको अब जैसी गति है वैसी होने दोगी, तो आप चाहे कितनी बात को, मैं तो कोई ग्लानी मानती नहीं हूं, मैं तो प्रारब्ध को मानती हूं, भैरव भाग्य में था। दुख देना किसी आदमी के हाथ में होता ही नहीं। ये मनुष्य झूठ बोलते हैं कि उस आदमी ने मुझे दुख दे दिया, उसने दुख दे दिया। कोई किसी को दुख नहीं देता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धि रेषा अहम करोमीति वृथा अभिमान। मैं ऐसा कर लेता और मैं ऐसा करता हूं, ये झूठा अभिमान है। सुख दुख तो अपने भाग्य से हम लेके आते हैं पहले से, तो सुखदाई परिस्थिति आएगी, दुखदाई परिस्थिति आएगी, तो आती है, भाग्य से आती है। आपने थोड़ी दी है, आप भी तो अपने भाग्य के अधीन थे। मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ सकती। इतना बड़ा कुंती का आदर्श संसार में कहीं नहीं मिलता। दुख देने वालों को इतनी सेवा से रखा, इसीलिए कुंती ने भगवान से भी यही कहा है कि भगवान आप उनको विपत्ति देंगे। विपदा संतो न शस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। जब मनुष्य विपत्ति में रहता है तब वो आपको याद करता है, भगवान को याद करता है, और जब वो ऐश्वर्य में रहता है, सुख में रहता है, मदान होता है, उस समय वो आपको भूलता है। संसार की अनुकूलता से भगत लोग डरते हैं, संसार की प्रतिकूलता से भगत लोग आराम में रहते हैं। अब बहुत अच्छा भजनी होगा और कुछ नहीं होगा। जिस गांव में संत लोगों का खूब आदर होता था, उस गांव में पुराने जमाने के संत ज्यादा रहते नहीं थे। अब चलो यहां से गुरु शिष्य की कथा आती है कि घूम घूम करके रहे, एक जगह नहीं रहते थे। गांव में जाते लोग कहते कौन आए हैं, कैसे आए हैं, लोग बड़ा तिरस्कार करते, जानते नहीं थे। ठंडी बासी रोटी देना, तिरस्कार से देना, बस वो ठीक है, बहुत अच्छा है, यहाँ पर बैठे भजन हो गए। धीरे धीरे लोगों को पता चलेगी भाई ये तो गुरु शिष्य दोनों भजन करते हैं, रात्रि में जगे करके बैठ करके अपना भजन करते हैं, राम राम करते हैं। तो लोगों में सुगंधी फैलने लगी, तो खूब अच्छी भिक्षा लाने लगी, खूब अब चलो यहां से। चेले ने कहा महाराज आराम तो अब मिलने वाला कि नहीं, ये आराम नहीं है, ये बड़ा कष्ट है, क्योंकि जब मुश्किल से रोटी मिलती है तब वहां नींद नहीं आ सकती, साथ साथ आलस्य नहीं होता, प्रमाद नहीं होता, और जब आप उसको आराम से रोटी मिलती है तो उसको खूब नींद आएगी, भजन में बाधा पड़ेगी, ये भजन की बाधा है, चलो यहां से। ऐसे संतों की आदत थी। अच्छे अच्छे भक्तों ने भगवान से यही कहा है, प्रभु आप संसार की विपत्ति देव, इसमें कुंती का नाम पहले है, पुनर्भव दर्शन, ताकि हमको दोबारा संसार के दर्शन न हो। ऊंचे कुल में जन्म लेना ये भक्ति के में अंदर बाधा है। नीच नीच सब तिर गए, राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान में डूबे सभी कुली। नीची जाति में हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लोग हमको पहले से ही दूर रखेंगे, अच्छा बात। एक भगवान का भगत था, वो नीची जाति में था, उसका स्पर्श नहीं करते लोग, अनजान देश में चला गया, बैठा भजन कर, लोग आए साहब कोई आगे के लो साहब हम आपको रोटी दें, ऊपर से देना भाई, ऊपर से, मैं नीच जाति का हूं, ऊपर से देना, ऊपर से देना। लोगों ने कहा कि अपनी जाति बताते क्यों, मैं इसीलिए बताते हैं कि हमारे अंदर घमंड न आ जाए। महाराज जी कहा करते थे कि जहां लोग खूब आदर दें वो उसको समझना चाहिए डेंजर है, डेंजर। जैसे कहीं बिजली का जो खंभा है वहां लिखा रहता है डेंजर, इतनी बड़ी मशीन लगी रहती है डेंजर लिखा रहता है, ऐसे जहां आदर मिले साधु को, सम्मान मिले, खूब जो है उसको आराम मिले, समझना चाहिए भक्ति के लिए डेंजर है, खतरनाक है। जन्म ऐश्वरी और विद्वत्ता और लक्ष्मी, इससे मनुष्य के अंदर अभिमान आता ही आता है। रामचरितमानस में कितनी अच्छी बात कही कि संसार में प्रभुता पाई जाय मदन काय मदन आई, प्रभुता मिल जाए घमंड न हो, ऐसा कौन होता है, केवल भगवान के भक्त होते हैं जिनको भगवान बचाते हैं, वे भी कहते हैं भगवान के बचाने से बचते, जिनको बचना बड़ा मुश्किल है, कई घाटियां हैं जीवन की, इनमें भगवान अंगुली पकड़ के, जैसे मां बच्चे का अंगुली पकड़ करके और खूब जो है आराम से यात्रा करा देते, ऐसे भगवान सारा देते बचते हैं, तो बच नहीं सकता। जन्मेश्वरी सुतश्री भी रेद मान मद पुमान नैवारत्य विधातु मई त्वामा किंचन मगोचरम। वो आदमी आपका भजन नहीं कर सकता, स्वयं बोलती है ये कुंती, इसलिए आप तो हमको विपत्ति विपत्ति देंगे, विपत्ति देंगे। भगवान से विपत्ति मांगी, वो अपना भतीजा है, वो तो कितना ही बड़ा ऐश्वर्य मांग सकते, ना ना विपत्ति देंगे। जिसको हम नहीं चाहते हैं, जिससे हम भगना चाहते हैं, वो मांगी। शास्त्र क्या बोलते हैं, विपदो नहीं वह विपद है, संपदो नहीं वह संपद है, ये संसार की विपत्ति विपत्ति होती नहीं, और संसार की संपत्ति संपत्ति होती नहीं, तो विपद विस्मरणम विष्णो हो। विपत्ति क्या है, भगवान को भूल जाए, ये विपत्ति है, और संपत्ति क्या है, संपत् नारायण स्मृति, सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान को याद करें। याद करने का तरीका कि मैं भगवान का होए राम को नाम जब तुलसी तजी को समाज। आज हम नाम जब तो करते हैं पर अपने को भगवान से दूर मान के करते हैं कि राम 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 करेंगे तब भगवान आएंगे तब भगवान मिलेंगे और जीते अपने रवाना हो जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज ने बहुत अच्छा कहा, होई राम को नाम जप, पहले भगवान के हो जाओ फिर नाम जप करो। होई राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज। जैसे पत्नी होती है वो पति के साथ पहले पत्नी होने की पत्नी उसके साथ फेरा लेती है, फेरा लेती है तब पता रहे मेरे पति का ये परिवार है ये कुल है, ये बाद में जान माना जाता है, ये ससुर का नाम ये है, सासू जी का नाम ये है, पति का नाम ये है, फलाना है। पहले वो उसके साथ संबंध करती है उसके बाद उसके नाम धाम का पता चलता है। ऐसे ही कोई राम को भगवान के हो जाओ, अब भगवान का नाम हो, मैं भगवान का हूं, भगवान का होकर के भगवान का नाम लिया जाए। वो एको भी कृष्ण से कृत प्रणामो दशाश्व मेधा व वृथेन तुल्य है। एक नाम भी होता है वो नाम कितना का ही कल्याण करने वाला होता है। एक आदमी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आया है, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आकर कहने लगा, महाराज मेरे पिताजी मर रहे हैं, उनके कल्याण के लिए कोई बात बताओ। तो वशिष्ठ जी तो बाहर गए थे, वशिष्ठ जी का बेटा वहां था। उसने कहा अच्छा ये बात है। तो उसने तुलसी के ऊपर तीन राम राम लिख दी तुलसी पत्ते पर, कहिए देव और सरयू नदी का जल है इसमें इसको घोट करके एकदम पत्ते और पानी एक मेक हो जाए तब उनको दे देना। तो पत्ते रह जाएंगे तो ये अड़ जाएंगे गले में तो सांस लेने में तकलीफ होगी, पत्ता और पानी एक मेक कर देना और फिर जो है धीरे धीरे उनको ये चम्मच से उनके गले में उतार देना। कहा कि महाराज सब कर दूंगा पर एक बात बताओ, मेरे पिताजी का जीवन कोई बहुत भगवान के भजन में नहीं लगा है, भगवान का भजन नहीं करते थे मेरे पिताजी, ही गप सप और यही संसार की ऊट पटांग बातों में लगे रहते थे, भजन कभी किया नहीं है, इसलिए आपके पास कोई बात नहीं। ये जो राम राम लिखा हुआ जो पानी जाएगा ना तुलसी के साथ घोटा हुआ सरयू नदी का पानी, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, उसने वैसे ही जाकर के खूब खरल में घोटा सरयू नदी के जल से तुलसी के पत्ते को घोट करके एकदम पानी 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 हो गया। तो उसको उनको अपने पिताजी को धीरे धीरे पिलाया, ऐसे करके गिट लिया उन्होंने। गिटने के बाद फिर उनके पिताजी बैठ गए अपने आप बैठ करके, और जैसे कोई ध्यान में बैठते हैं ऐसे बैठकर राम ऐसे कहे सांस रोका तो ब्रह्मांड में से प्राण निकले। वो लड़का बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरे पिताजी के ब्रह्मांड में से प्राण उसी के निकलते हैं कि जो जीवन मुक्त होता है। सबके वो जरूरी नहीं, सबके जितने जीवन मुक्त हैं सबके प्राण यहां से निकले जरूरी नहीं है, पर ऊर्ध्वांग से होंठ से प्राण निकले, मुंह से या आंख से इनसे भी निकल गए। देखो कई पुरुषों की आंख खुली रहती है, मृत अवस्था में खुली रहती है, मुंह खुला रहता, आंख बंद मुंह खुला, कई मुंह बंद है पता नहीं चलता कि ये मर गए जीवित है। तो यहां से प्राण निकले, अंतिम संस्कार कर करा करके और फिर वो वशिष्ठ जी के आश्रम में आए दुबर करके, क्या रोया है वो उस वक्त वशिष्ठ जी वही थे। वशिष्ठ जी ने कहा भाई रोता क्यों, क्या बात है, बात तो बता मैंने कि महाराज क्या बता, हम सबका उद्धार कर दिया आपने, कि क्या बात हुई, बात बता। मेरे पिताजी कभी भगवत संबंध करते ही नहीं, नाम लेते नहीं, कथा में नहीं, सत्संग में नहीं, ऐसे ही बस हाय हुई के अंदर ही उन्होंने जिंदगी बिता दी। आपका लड़का, आपका जो सुपुत्र है, उसने मेरे को बताया ये तीन नाम लिख ले और ये सरयू नदी के अंदर उन्हें सरयू का पानी लेकर के पिला दे, कल्याण हो जाएगा। तो साहब मैंने तो ऐसा ही किया, वो दिया तो ब्रह्मांड से मेरे पिताजी के प्राण मिले। ये एक समाचार कहने आया हूं, आपका सुपुत्र कहाँ है। वशिष्ठ जी से एकदम आग लग गई, बुलाया वह अपने पुत्र को, पुत्र को बुला करके कहा कि तू निकल जा मेरे आश्रम से, तूने चांडाल का काम किया है, तेरे समान कोई अपराधी नहीं है। उसने कहा महाराज क्या अपराध हुआ, ये देखिए खुद बता रहा है, तूने तुलसी के ऊपर तीन नाम के तीन नाम लिखे लिखे महाराज, और फिर सरयू नदी के पानी में घोट करके पिलाने की बात कही कही। ये कहता है उससे ब्रह्मांडों का जो है छेदन करके गया, निकल जाते जाते नीच जाति में जन्म लो, साफ देता हूं। कहा कि महाराज मैं समझा नहीं हूं, मेरी गलती क्या हुई, मैं तो इसको अभी भी अच्छा मान रहा हूं, अभी भी अच्छा मान रहा हूं, मेरी गलती क्या है, मुझे गलती का बोध करा दो ताकि भविष्य में गलती ना करूं। माने नहीं। गुरुजी ने कहा कि देख तीन नाम क्या, एक नाम यदि तू तुलसी पर लिख करके उसको पूरी सरयू नदी के अंदर डाल देता तो जब तक सरयू नदी धरती पर रहती तब तक उस सरयू नदी का जो जल पीने वाला होता उसके असंख्य प्राणियों का कल्याण होता। तूने तीन नाम एक आदमी के लिए खर्च कर दिया तो चला जाएगा और नीच योनि में जन्म ले। तो मालूम है ये निषादराज था, वो निषादराज ही वशिष्ठ जी का बेटा बना हुआ है, जन्म लिया निषादराज। रामचरित मानस को आप अच्छी तरह से देख लेना, नहीं समझ में आवे तो आपको बता देंगे। निषादराज की और पहले पहले जब भरत जी की भेंट हुई है ना, उस समय निषाद को गले नहीं लगाया, वशिष्ठ जी दूर खड़े रहे। बाद में विचार आया कि इसके अंदर भक्ति पैदा हो गई, तभी तो भरत जी से इतना प्रेम किया है, राम जी से इतना प्रेम किया है, रात भर राम जी को इसने पहरा दे करके लक्ष्मण जी से ज्ञान लिया है, सब ज्ञान हुआ। तब तो वहां चित्रकूट के अंदर जब निषादराज मिलते हैं तब तो से बातों बात मिलते हैं वशिष्ठ जी से, उसकी भक्ति को देख कर। तो जन्म ईश्वरी सुतश्री भी रेदमान मदह पुमान। विपत्ति क्या है, भगवान को भूलना। संपत्ति क्या है, भगवान को याद रखना। कहा हम सोचने के नीचे स्तर पर आ गए, एकदम नीचे, कि विपत्ति क्या है कि रुपया नहीं है, और संपत्ति क्या है को हीरा मोती रुपया पैसा जमीन जायदाद खूब संपत्ति होगी। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन नहीं होई। मानव शरीर मिला और आपका भजन न करे, इससे बढ़कर जीव के ऊपर क्या आफत आएगी, सबसे बड़ी आफत है। स्वर्ग के अंदर बैठे देवता लोग हम लोगों को देख देख करके अचंबा कर रहे रे, मानव शरीर के अंदर ही कहां पड़ गए, ये तो हमारे पास बहुत है, खूब धन अपार वैभव। स्वर्ग में तो सिवाय अनुकूलता के दूसरा कुछ है ही नहीं, अनुकूलता ही अनुकूलता है, शरीर बीमार होता नहीं, सबसे बड़ी अनुकूलता तो ये है। शरीर माता के गर्भ के अंदर रहता नहीं, सबसे बड़ी अनुकूलता ये है। और मरता है तो जैसे यहाँ हम लोग मर जाते हैं, हमारे शरीर को लेकर के लोग जला देते हैं, ऐसे देवताओं में होता नहीं है। देवताओं का न तो गर्भवास होता है और न देवता लोग ऐसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए अजर और अमर माने जाते हैं। जैसे ये कपूर है, ये बड़ा बड़ा अदृश्य होता है, ऐसे देवताओं का शरीर दिखते 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 अदृश्य हो जाता है। देवता लोग एकदम प्रकट होते हैं, अग्नि और अग्निमय शरीर होता है उनका, तेजोमय शरीर, इस कारण उनमें कोई बीमारी नहीं होती, वात पित्त कफ की बीमारी नहीं होती। सबसे ज्यादा अनुकूलता इन सारी सृष्टि में हमारे पास, लेकिन हम बहुत दुखी हैं। दुखी क्यों? कि हमारे पास खूब संपत्ति है पर और संपत्ति की इच्छा होती है, कामनाएं होती है, क्रोध आता है, ईर्ष्या होती है। एक देवता के पास ज्यादा धन, एक के पास कम धन, तो आपस में अभिमान ईर्ष्या होती है कि इसके पास ज्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है। तब हम लोग दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको मानव शरीर में भेजो, क्योंकि काम क्रोध लोभ अहंकार इन सब का नाश केवल मानव शरीर में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। जैसे मेले से मेला गंदे से गंदा कपड़ा है, वो धोबी के पास ही डूबता है, साफ हो जाता है, ऐसे ही हमारी सारी जन्म जन्मांतर की बुराइयां पाप ये सब मानव शरीर में और केवल सत्संग में ही धुलता है, साफ होता है, और कहीं साफ होने की जगह नहीं है। मानव शरीर में हो, मानव शरीर में हो, तो हम जिस देवताओं के भोगों को चाहते हैं, देवता लोग उनसे तो बाबा हाथ पिंड हाथ जोड़ करके पिंड छुड़ा करके यहाँ आना चाहते हैं, और हम यहाँ आ गए तो हमें भगवान के भजन की कोई परवाह नहीं है। काकभूषण जी ने कहा कि हानि की जगह ही समकछु भाई, इससे भी बड़ी कोई हानि होती है क्या? कि भजै न रामई नर्थ न पाई, मानव शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं किया, इससे भी बड़ा कोई नुकसान घाटा कुछ होता है क्या? शेयरों में घाटा लग गया, व्यापार में घाटा लग गया, इज्जत में घाटा लग गया, वैसे घाटा लग गया, कोई नहीं बाबा, ये तो बहुत दूर पड़ा है, इससे आपका कोई संबंध नहीं। भगवान का भजन होता है कि नहीं? भगवान का भजन होता है, बस कोई घाटा नहीं। यदि भगवान का भजन नहीं होता है मानव शरीर में, तो हानि की यही जग सम कछु भाई, इससे बड़ी कोई हानि होती है। लाभ की कछु अरी भक्ति समाना, और भगवान की भक्ति के समान कोई लाभ माना गया है? नहीं माना। जय गावै सुखी संत पुराना। देखो लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, अपने को तो शास्त्र की संतों की बातों में आना चाहिए। लोगों के बहकावे में आ गए हम लोग, लोगों ने बहका दिया, धन में सुख है, परिवार में सुख है, शरीर में सुख है, ये है वो है, बहका दिया हम, और हम बहकी गए। इसलिए अपनी दृष्टि बदल करके कि भाई यहां नहीं मिलेगा हमको, तो हमको तो यही मिलेगा। संतों के पास जो बात है, महात्माओं के पास में है, शास्त्रों में है, भगवान ने कहा है, अच्छे पुरुषों ने अपने जीवन में अजमा करके कहा है, वो बात मानी नहीं, दूसरी नहीं मानी। पूरी कथा तो याद नहीं है, एक बार एक आदमी अपने ऊंटों के ऊपर खड़िया मिट्टी लेके जा रहा था, खड़िया मिट्टी लेके जा रहा था दिल्ली की तरफ, साथ में कुछ बेकलू मिट्टी भी थी, खड़िया मिट्टी भी थी और बेकलू मिट्टी भी थी। तो दिल्ली से एक व्यापारी लौट करके आ रहा था, दोनों यूं मिले, उसके पास भी कई ऊंट थे, ऊंट वो बहुत बढ़िया बढ़िया सामग्री लेकर के गया दिल्ली। दिल्ली गया तो वहां उसका सामान सस्ते भाव में बिका, तो उस जमाने में उसको हजारों रुपए का नुकसान हो गया, हजारों रुपए का नुकसान। तो वो आ रहा था। और ये आदमी यहाँ मारवाड़ से कुछ तो ऊंटों के ऊपर खड़िया मिट्टी और कुछ ऊंटों में बेकड़ी मिट्टी, अपने थोरों की बेकड़ी मिट्टी लिए लेके क्यों जा रही हूँ, मिले दो। राम राम भाई, राम राम, काई ले जावे थारे ऊंटा पर, ऊंटा पर तो बेकड़ी मिट्टी ले जाऊं, थोड़ी खड़िया मिट्टी ले जाऊं। अरे आ काई डाली, कोई बढ़िया चीज ले जा, दिल्ली रो बाजार है, मिट्टी बटकुण पूछे, मिट्टी ने बटकुण पूछे, मिट्टी का ही ले जा रहे, बढ़िया चीज ले जा। तो थे बार कठू आया कि मैं बार दिल्ली हूं आया, आप का ही चीज ले गया, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया अनाज बोरा मारने घलिया है, ऊंट रहे ऊपर वो खूब मोटो सारो वह काड़ो काड़ो का ही बोले मिले साठी काम को। तो अनाज गेहूं है, चावल है, मक्की है, अनाज भर ले गया, अनाज तो सब खा हुई है, तो मैं दे गया ले गया। तो फिर तान का मुनाफो योग घाटो का ही, मतलब घाटो हो गया माने घाटो हो गया। अब थे आप मिट्टी ले जाओ जा, माना अचंभो है कि कांटा थाने कितो घाटो लागी, लागी तो लागी ले जाओ, थे तो उपदेश तो दे, लेकिन थाने लास्ट में थाने घाटो मिलियो, तो ऐसो घाटो घाटारो काम थे करो, थारी बात में गोली मान, थारी बात नहीं माना, चला गया आगे आगे जार जठे लार आप रहे ऊंटा रहे ऊपर मिट्टी विट्टी वो सब भीग लगाए हुई, धोरो सोग लगा दियो, कई आऊ मिट्टी डार पर डाली, जितनी राज घटना रहा आदमी आया, बोल भाई थारी मिट्टी तो कितना भाव में दे, बोल। रबो बोलियो क्यों क्यों मांगो मिट्टी, अरे अरे दिल्ली रो बादशाह है, वो भयंकर बीमार हो गयो, तो डॉक्टर लोग वैद लोग भी किया है कि यदि धोरारी मिट्टी हुए बेगलू मिट्टी वैर बीर पर सो जावे तो थारी आ बीमारी ने बार मिट्टी खींच ले, नहीं तो तू बचलो नहीं मर जाए, रब माने भेजा है। राजा की होगी महाराज दिल्ली रे मायने मिट्टी कट मिले, तो मैं कह रहा है कि नहीं दिल्ली रो एक ऐसो बाजार है जो काई चीज नहीं मिले, सब चीज मिले। अब देखो था मैं बहुत देर से ढूंढता, माने मिट्टी मिली को नहीं, आप मिट्टी माने मिल गई, लाओ काई बात तो जो मुंडा बोले जो रुपया ले तू और मिट्टी दे जैसी बात कर, वो मन चाहे रुपया लिए और मन चाहे रुपया ले और देर हुआ रवाना, वो रवाना हुई और अठिनो वो व्यापारी यू आवे रब यू मिले दोनों, वो और भी कई चीजा ले रहे हो के बस घाटो खा रहा नहीं दिल्ली जा, हे बाबा मैं तो घाटो खायो वो नहीं, घाटो नहीं खायो मिट्टी बेच रहे घाटो नहीं खायो, वो गया मैं तो इतना हजार रुपया कमार लायो, इतना हजार रुपया ये झूठी बात, झूठी एकदम, मैं मानू ही वो नहीं, मत मानू घाटो तो मारत लागो नहीं, रुपया मार करना है, अब थे कहीं समझो बोले। ऐसे ही संसार का लोग आपने कहे कि भगवान की भक्ति बड़ी चीज को नहीं, यू है संसार में धनी बड़ो है, यू बड़ो है, तो मैं वही वास्तव में ई मार्ग पर केवड़ा को नहीं, संत महात्मा कहे जी की बात मानो। इस प्रकार से कुंती माता ने यही बात मानी कि संसार में जो विपत्ति आती है उससे मनुष्य का बड़ा सुधार होता है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। अब आगे द्रौपदी की कथा है, बोलो।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय
गोविंद जय जय।